पहला सैमुअल अध्याय 15। अब अध्याय 15 में देखिए कि शमूएल शॉल से क्या कहता है। अध्याय 15 पद 1 में, शमूएल ने शॉल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इसराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। उसने आज्ञा ना मानने का उसे एक नमूना दिखाया। वो अपनी मन मर्जी पूरी करने वाला बन गया था, इसलिए भविष्यद्वक्ता आता है और उसे चेतावनी देता है, ये मेरे लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमें भी हमारी अपनी मर्जी से विनाश के रास्ते पर चलने के विरुद्ध चेतावनी देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको विनाश के रास्ते पर चलने से रोकने के लिए बार बार चेतावनी दिए बिना यूं ही नहीं छोड़ देते। बाइबल बताती है नीति वचन 29 पहला पद, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आता है और आपको चेतावनी देता है, हे अपनी मर्जी का जो रास्ता तुम चुन रहे हो वो रास्ता तुम्हें नष्ट कर रहा है, इस पे मत चलो। आप परमेश्वर को सुनिए, उस पर ध्यान लगाइए, परमेश्वर की आवाज को मानिए। शमूएल एक चेतावनी के साथ उसके पास आया है और उसको परमेश्वर के कार्य के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर ने उसे किस लिए भेजा है, इसलिए आप प्रभु की बातें सुन। अध्याय 15 पद 2 और 3 में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया था, और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यनाश कर, क्या पुरुष स्त्री क्या बच्चा क्या दूध पीऊवा क्या गाय बैल क्या भेड़ बकरी क्या ऊंट क्या गधा, सबको मार डाल, कुछ भी अपने साथ ना लाना, बिना दया किए सब कुछ सत्यनाश कर या मार डाल। अमालेकियों के विरुद्ध परमेश्वर की ओर से बदला लिया जाए। आप कहेंगे, ओह ये तो परमेश्वर की बहुत भयंकर आज्ञा है। आप ऐसे सोच सकते हैं जब तक कि अमालेकियों का इतिहास या उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वे बहुत भ्रष्ट थे, वे अपने को स्वयं समाप्त करने जा रहे थे। परमेश्वर समाज से कैंसर उन्मूलन की आज्ञा दे रहा था। वे पागल कुत्तों की तरह थे, अगर तुम उन्हें नष्ट नहीं करोगे तो वे निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अमालेकियों के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दी। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि बाइबल में अमालेकी देह को दर्शाते हैं। परमेश्वर इस हार्ड मास को पूरी तरह से समाप्त करने की आज्ञा दे रहा था, उनका संपूर्ण रीति से सफाया कर दो, देह को कोई जगह मत दो। बाइबल बताती है रोमियो 8:13 पद, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर ने कहा, इसको कोई जगह मत दो, इसे मार कर पूरी तरह साफ कर दो। अब शॉल सेना के साथ गया और परमेश्वर ने अमालेकियों पर विजय दी, फिर भी उन्होंने देखा कुछ गाय बैल और कुछ भेड़ बकरियां बहुत अच्छी हैं, अतः उन्होंने उसे रख लिया। उसने राजा को जिंदा पकड़ दिया, लेकिन बीमार भेड़ों बीमार गायों को उन्होंने सच में टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने अमालेकियों को भी एक मौका नहीं दिया, बीमार और दुर्बल मवेशियों को उन्होंने सफाया कर दिया, लेकिन जो अच्छे स्वस्थ और मजबूत थे उन्हें उन्होंने अपने लिए रख लिया। अब ये जो भी था ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने को बचाने का शौल के लिए फिर ये मौका था, लेकिन ये अवज्ञा आज्ञा न मानने का अपराध था। अमालेकियों को पूरी तरह से साफ करने की असफलता, उसकी सारे गाय बैल और उनके सारी भेड़ बकरियों इत्यादि को नाश करने की अवज्ञा है। हम इतिहास में कुछ साल आगे चलते हैं। ज्यादातर लोग इस कहानी से परिचित होंगे। आप सब ने बाइबल पढ़ी होगी। जब एस्तर फारस में रानी चुनी गई थी और वहां फारस के राज्य में एक आदमी था जो सारे यहूदियों को नष्ट कर देना चाहता था, क्योंकि मोर्देकाई नामक यहूदी उसके सामने झुकता नहीं था, जिससे वो सह नहीं सकता था। उसके दिल में इस आदमी के लिए बहुत घृणा थी। उसने एक छलपूर्ण योजना बनाई जिसमें सारे यहूदियों का सफाया होना था। उसने इस बारे में राजा से आदेश पर हस्ताक्षर भी करवा लिए कि एक निश्चित दिन में फारस के सारे राज्य से सारे यहूदियों का सफाया कर दिया जाए। इस दुष्ट आदमी का नाम हामान था। पुरिम का पर्व या भोज 2 मार्च को मनाया जाता था। पुरिम का भोज परमेश्वर द्वारा उन्हें इस दुष्ट हामान से छुड़ाने का उत्सव है। इसराइल में ये लगभग हैलोवीन जैसे पर्व है। उसमें छोटे बच्चे सुंदर पोशाक पहनते हैं। लड़के दुष्ट हामान के कपड़ों में गंदे नकली चेहरे लगाकर उसका रूप बनाते हैं। छोटी लड़कियां एस्तर के जैसे सजती है। सारी छोटी लड़कियां बहुत सुंदर हैं और उनके पास उनके नकली चेहरे और उनकी जादू की छड़ी और सब कुछ होता है। ये एक पवित्र विश्वास जैसा है। वे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक तरह से भोज करते हैं। उनके पास केक, हामान की टोपी और तरह तरह की चीजें होती हैं। ये असल में एक छुट्टी का दिन होता है, पुरिम का भोज। लेकिन जो बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो है हामान का मूल वंश। वो अमालेक के राजा आगाग के वंश का था। वो एक आगागी था, क्योंकि शौल परमेश्वर की आज्ञा को संपूर्ण रीति से मानने में असफल हुआ था। इसलिए लगभग सारे इसराइली राष्ट्र के अस्तित्व के लिए ये बाद में महंगा पड़ा। ये आगागी हामान उन्हें संपूर्णता साफ करने वाला था। अगर आप अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, अभिलाषाओं को वश में नहीं करते और उन्हें छूट देने और सहन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये मेरा अच्छा भाग है, ये बहुत खराब नहीं है, तो आपका शरीर आपको नष्ट करने के लिए वापस आएगा। आपको अपने पुराने व्यक्तित्व को क्रूस पर चढ़ाना ही पड़ेगा। हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ समझना चाहिए और इसमें असफलता हमारे लिए आगे जाकर सचमुच परेशानी उत्पन्न कर सकती है। आपका शरीर आपके साथ रहने के लिए और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को समाप्त करने के लिए वापस आ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाए और पुराने मनुष्यत्व को मृत समझे। शौल अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को रखकर परमेश्वर की आज्ञा को मानने में असफल रहा। इसलिए जब वो युद्ध की लूट के साथ वापस आया, शमूएल जो कि अब एक वृद्ध व्यक्ति था ठीक से देख भी नहीं सकता था, शौल से मिलने आया। अध्याय 15 पद 13 में, जब शमूएल शौल के पास गया और शौल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। झूठ, लेकिन उसकी आत्मिक या धार्मिक भाषा को देखिए, तुझे प्रभु की ओर से आशीष मिले। बहुत लोग आध्यात्मिक शब्द का अनर्थक प्रयोग करते हैं, लेकिन असल में इसका कोई अर्थ नहीं होता। वे जगह जगह जाते हैं और कहते हैं, ओ परमेश्वर की महिमा हो, ओ परमेश्वर आशीष दे, जबकि वे आपकी जेब काट रहे हैं। ये ठीक है, इसराइल में एक जवान लड़का है, वो एक अरब का लड़का है, और जब हम ओलिव के पहाड़ के रास्ते पर नीचे आते हैं, हमें हमेशा मिलता है, ओ मेरा अमेरिका का भाई, ओ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया, ओ मेरा कैलिफोर्निया का ईसाई, ओ मेरे भाई। देखिए, उसके गले लगाने के बाद आपका पर्स या पेन या कुछ और गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक अनर्थक शब्द कुछ साबित नहीं करते। आप आध्यात्मिक भाषा के प्रयोग करने वाले ढोंगी हो सकते हैं। प्रायः ये वेश बदलने के रूप में प्रयोग की जाती है। तुझे प्रभु की ओर से आशीष मिले, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने प्रभु की आज्ञा पूरी की है। ओह, शमूएल ने धोखा नहीं खाया, उसने कहा, अध्याय 15 पद 14 और पद 15 में, शमूएल ने कहा, अगर तुमने वो सब पूरा कर दिया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, फिर भेड़ बकरियों का ये बिबियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई दे रहा है, ये क्यों हो रहा है? शौल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब को तो हमने सत्यनाश कर दिया है। अब फिर याद कीजिए, शौल में बहाने बनाना विकसित हो चुका है। जब उसका अपनी गलती का सामना हुआ, तो पश्चाताप करने की जगह उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर बलि की भेंट चढ़ाई, और शमूएल ने उसे इसके लिए बुलाया था, तब उसने कहा था, ओह आप जानते हैं, ये लोग बिखरने लगे थे और मैं मजबूर था, ये सब लोगों के कारण हुआ। अब फिर से गलती का सामना, इसका क्या मतलब है कि तुमने सब कुछ मिटा दिया? अगर तुमने कर दिया तो मैं भेड़ और गाय बैलों की आवाज कैसे सुन रहा हूं? ओह, ये लोग, उन्होंने अच्छा या उत्तम रख लिया, वे उन्हें बलि के लिए ले आए। धार्मिक बहाने सबसे ज्यादा तिरस्कृत या निंदनीय होते हैं। अध्याय 15 पद 16 से लेकर पद 20 तक में, तब शमूएल ने शौल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही वो मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, शौल ने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इसराइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इसराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यनाश कर। ध्यान दीजिए कि वो उन्हें पापी कहता है, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की वो बात डालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शौल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों को सत्यनाश किया है। वो झूठ बोल रहा था, वो पश्चाताप नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो अपनी ही दृष्टि में तुच्छ जाना गया तब वह एक अंतर उत्पन्न हुआ। अब वो घमंडी हो गया है, घमंड उसके जीवन को नष्ट करने वाला है। अध्याय 15 पद 22 में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मान ना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। दिखावे का बहाना। परमेश्वर आज्ञा न मानने वाले हृदय के बलिदानों से कोई रुचि नहीं रखता। परमेश्वर बलिदानों से ज्यादा उसकी आज्ञाकारिता चाहता है। बहुत बार लोग अपनी अपराध भावना को ढकने के लिए परमेश्वर को देते हैं। आवश्यक नहीं परमेश्वर को देना बड़ी धार्मिकता हो। लोग अपने को अपराधी या दोषी अनुभव कर सकते हैं। ओह, मैं परमेश्वर को एक बलि चढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आज्ञा ना मानने के लिए मैं अपने को बहुत दोषी समझता हूं। परमेश्वर आपके बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन चाहता है। परमेश्वर की आवाज पर कान लगाना मेढ़ों की चर्बी को वेदी पर चढ़ाने से उत्तम है। अध्याय 15 पद 23 में देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। दूसरे शब्दों में, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, वो आपके जादू टोना में होने के बराबर है। अगर आपके पास हट की आत्मा है तो आप उस इंसान से अच्छे नहीं है जो मूर्तियों की पूजा करता है। विद्रोही और जिद्दीपन ऐसे काम है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। विद्रोह जादू टोने की तरह और हट भी मूर्ति पूजा की तरह खराब है। अध्याय 15 पद 23 और पद 24 में तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, परंतु ये सच्चा अंगीकार नहीं था। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। ओह, वो लोगों से नहीं डरता। अपनी आज्ञा न मानने के लिए शाऊल फिर से बहाना बनाता है। परमेश्वर सिर्फ एक सीधा निष्कपट अंगीकार चाहता है। परमेश्वर, मैं गलत था, मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैं पश्चाताप करता हूं। बस परमेश्वर यही चाहता है। देखा जाए तो ये पश्चाताप सा नहीं लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पश्चाताप नहीं है, ये केवल इस निंदा या परमेश्वर की निंदा से भरे सत्य की घोषणा है। ओह, मैंने पाप किया था। आपके अंदर कुछ भी अंतर नहीं लाता। पाप को त्यागना महत्वपूर्ण है। पाप से मुड़ना ही पश्चाताप है। यही परमेश्वर चाहता है। अध्याय 15 पद 25 से लेकर पद 29 तक में परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इसराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे के छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इसराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इसराइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। अब इसराइल का बलमूल ये परमेश्वर के लिए है। ध्यान दीजिए, इसराइल का बलमूल ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है। गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि पछताए। क्या उसने नहीं कहा? क्या उसने ये अच्छा नहीं बनाया? लेकिन कुछ पद आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जहां वो कहता है, परमेश्वर पछताया कि उसने तुम्हें राजा बनाया था। ये दो तरह की बात कहां से आई? जो इसराइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। अध्याय 15 पद 30 से लेकर पद 35 तक में उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इसराइल के सामने मेरा आदर कर, मेरे अपराधों पर पर्दा डाल दे और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। ध्यान दीजिए कि वो कहता है, तेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर नहीं। तब शमूएल लौट कर शौल के पीछे गया और शौल ने यहोवा को दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। तब आगाग आनंद के साथ ये कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शौल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शमूएल ने अपने जीवन भर शौल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शौल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शौल को इसराइल का राजा बनाकर पछताता था। अतः परमेश्वर वहां इसराइल का बलमूल है, वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। तब इसका क्या मतलब है कि यहोवा शौल को इसराइल का राजा बनाकर पछताता था? परमेश्वर के व्यक्तित्व को और उसके काम को मानवीय भाषा में व्यक्त करना हमेशा कठिन रहा है, क्योंकि हमारी भाषा सीमित है। अब परमेश्वर के पास ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, सामर्थ्य या क्षमताएं हैं, जिनके लिए हमारे पास कोई इंसानी भाषा नहीं है, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे परमेश्वर सोचता है, वैसे तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो सोच भी कैसे सकता है जबकि वो सब कुछ जानता है? मैं परमेश्वर के सोचने के तरीके को कैसे व्यक्त कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के कामों को कैसे व्यक्त कर सकता हूं? मैं उन्हें केवल इंसानी ढंग से व्यक्त कर सकता हूं। वे मेरे सामने आने अवश्य है, लेकिन फिर भी मैं इंसानी भाषा में बंधा हूं। अब मैं निश्चित हूं कि वहां स्वर्ग में जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ा है और सब बातों को व्यक्त करने में सामर्थ्य है, परंतु हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे इंसानी अनुभव के बराबर कर दे। यहां हम परमेश्वर के एक काम का वर्णन देख रहे हैं, और वो काम है शौल से अपना अनुग्रह हटाना, शौल के प्रति परमेश्वर के व्यवहार का बदलना। अब पश्चाताप शब्द का अर्थ है परिवर्तन। परमेश्वर अब शौल के साथ अपना व्यवहार बदल रहा है। हमारे पास उस परिवर्तन का वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द है, पछताना। लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले या पछताए। लेकिन अभी हमारे पास सीमित इंसानी भाषा है, इसलिए परमेश्वर के कामों को हमें इंसानी भाषा में ही व्यक्त करना है। शौल के प्रति परमेश्वर के स्पष्ट बदलते व्यवहार को व्यक्त करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका और केवल एक शब्द है, पछताना। फिर भी क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये एक पछतावा या पश्चाताप नहीं है। जैसे पछताना हम अपने इंसानी दिमागों में सोचते हैं, लेकिन केवल यही एक शब्द शब्दकोश में है जिससे हमें इस व्यवहार के परिवर्तन को व्यक्त करना है, इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये उस तरह का पछतावा नहीं है जैसे एक मनुष्य अपने निर्णय या काम के बाद करता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपकी सहायता की है।